इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।
So children, are your strength? और अभी हम उसके ताल्लुक से देखेंगे कि हम कैसे उनकी खुदा में तरबियत कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दे आर योर स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली वो माँ की स्ट्रेंथ है, वो बाप की स्ट्रेंथ है, वो चर्च की स्ट्रेंथ है, वो खुदा के काम की स्ट्रेंथ है। हाँ जी, पांचवी आयत पढ़ेंगे।
खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे।
खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे, किन से? तीरों से। सिर्फ बच्चों से नहीं भरा हुआ, बल्कि ऐसे बच्चों से जो खुदा के साथ चलते हैं। तीरों से भरा हुआ है, लकड़ियों से नहीं भरा हुआ जिनका तरकश, बल्कि तीरों से भरा हुआ है। सो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया कि इसका क्या मतलब है कि भरा हुआ है, कितने बच्चे होने चाहिए। तो आयत पढ़ने से ऐसा हमें लगता है कि खुदा लार्जर फैमिलीज को सपोर्ट करता है। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा हुआ है। लेकिन भरे होने का क्या मतलब है? कितने को हम भरा हुआ कह सकते हैं, कितने को हम कम भरा हुआ कह सकते हैं, और कितने को हम खाली कह सकते हैं, इसमें बाइबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे लंबे बाल जो है, कितने बालों को हम लंबा कहेंगे? हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया, 1 इंच जो लंबे हैं वो भी लंबे हैं, जो 2 इंच लंबे हैं वो भी लंबे हैं, जो नीचे की तरफ छेन जा रहे हैं, जो ऊपर की तरफ लड़के कर लेते हैं वो भी लंबे हैं। तो बाल तो हर तरह लंबे हैं। इसी तरह से जैसे जूतियों के डिफरेंट साइज होते हैं, तरकश के भी डिफरेंट साइज होते हैं। और कुछ तरकश ऐसे थे जिनमें 6 तीर रखे जाते थे, कुछ में 3 रखे जाते थे, कुछ में 12 रखे जाते थे। सो गर्चे खुदा लार्जर फैमिलीज को सपोर्ट करता है, उनके हक में भी है, उनके लिए भी बरकत चाहता है, लेकिन बाइबल की बहुत सी फैमिलीज शॉर्टर फैमिलीज भी थी। जैसे इब्राहिम और सारा की जो फैमिली है, उनकी कितनी औलाद थी? ओनली 1 चाइल्ड, आइजक। आइजक कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। सो जरूरी नहीं है कि ज्यादा बच्चे ही खुदा की ब्लेसिंग है, या कम बच्चे होने का मतलब ब्लेसिंग नहीं है। कम है या ज्यादा है, असल चीज ये है, ब्लेसिंग ये है कि हम अपने बच्चों को खुदा प्रस बच्चे बनाएं, और जब वो बड़े हों तो वो अपने पेरेंट्स को भी सर्व करें और वो अपने खुदावंद को भी सर्व करें। किसी भी एक फैमिली की सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है, एक एक मां की और एक बाप की या पेरेंट्स की सबसे बड़ी गवाही ये है कि उनके बच्चे निजात याफ्ता है। कई दफा हम ये गवाहियां देते हैं, और अच्छी बात है कि खुदा ने मेरी नौकरी बहाल कर दी, खुदा ने मुझे जॉब दे दी, खुदा ने मेरी मदद कर दी, खुदा ने मुझे शिफा दे दी, दिस इज ऑल वेरी गुड। लेकिन जो आपके फैमिली की बेहतरीन टेस्टमनी है वो ये है कि मेरे सारे बच्चे निजात याफ्ता हैं, मेरे सारे बच्चे रूल कुद्दस से मामूर हैं, मेरे सारे बच्चों ने पानी का बपतिस्मा लिया है और चर्च में खुदा को सर्व करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो खादम है, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं चर्च में, जो कुछ भी कर सकते हैं चर्च के लिए वो करते हैं। ये आपकी बेहतरीन टेस्टमनी है, और इसमें 2 चीजें शामिल हैं। नंबर 1, इसमें एक अगली नस्ल शामिल है, एक अगली नस्ल खुदा के साथ चल रही है। और दूसरी चीज जो इसमें शामिल है टेस्टमनी में, वो क्या है? अबदीयत, इटर्निटी, जो आपके बच्चों की जिंदगियों में दाखिल हो गई है। So children are your strength। तीर जो है, खुश नसीब है वो आदमी जिनका तरकश उनसे, तीरों से भरा हुआ है। So the more children, more godly children you have। अगर 6 बच्चे हैं सपोज किसी के, और वो सारे खुदा से दूर हैं, तो उनका तरकश खाली है। खुश नसीब है वो आदमी जिसके सारे बच्चे उसके साथ चर्च में जाते हैं, जिसकी फैमिली उसके साथ चर्च में है, जिसके बीवी बच्चे उसके साथ चर्च में हैं, जिसके शौहर उसके साथ चर्च में हैं, और वो खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में जो बरकत है वो बेशबहा है। फैमिली की ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग सोने और चांदी से बढ़कर है। और एक बच्चा ये ज्यादा पसंद करता है कि उसका बाप जो है वो गॉडली हो और उसको टाइम दे, बजाय इसके कि वो किसी वीपी का एग्जेक्टिव हो और बीएमडब्ल्यू उसके पास हो। उससे ज्यादा बच्चे इस बात को प्रेफर करेगा कि उसका जो बाप है वो खुदा प्रस्त हो और उसको टाइम देने वाला हो और उससे प्यार करने वाला हो। अगर आपकी फैमिली लाइफ कामयाब है तो आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में कामयाब होंगे। अपनी खानदानी जिंदगी में मेहनत करें, आप स्टडीज में कामयाब होंगे, जॉब में कामयाब होंगे, बिजनेस में कामयाब होंगे और मुखालफों का सामना करने में आप कामयाब होंगे। जब आपकी फैमिली लाइफ कामयाब होगी आप हर जगह पे कामयाब होंगे। जब आप फैमिली लाइफ में खुश होंगे आप हर जगह पे खुश होंगे। आप मुसीबत में भी खुश होंगे, आप आजमाइशों में भी खुश होंगे। जो शख्स अपने खानदान में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, वो हर जगह खुश होगा। जो अपने खुदावंद में खुश है वो हर जगह पे खुश होगा। और इसलिए पॉल कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं हमेशा खुश रहो। नंबर फोर, बच्चे फैमिली की उम्मीद है, फ्यूचर है। आपके जाने के बाद आपका जो नाम है वो आपके बच्चे कैरी करेंगे, चाहे वो आपके फिजिकल औलाद है या आपकी स्पिरिचुअल औलाद है, वो उसको कैरी करेगी। योर चिल्ड्रन आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर होम, तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये है, योर चिल्ड्रन आर द होप ऑफ योर होम, योर चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ योर होम। कौन से बच्चे? जो खुदा में हैं। स्वयं पढ़े ज़बूर 128 उसकी तीसरी और चौथी आयत।
तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद।
सो सामिस्त हमें दो बातें यहां पर बता रहे हैं, गॉडली वाइफ एंड गॉडली चिल्ड्रन। सो ज़बूर नवीस ये फरमाते हैं कि तेरी बीवी, कौन सी बीवी? जो खुदा परस्त है, जो खुदा में है, नेकोकार बीवी, तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी। सो एक बीवी की एग्जाम्पल यहां पर दी गई और एक औलाद के ताल्लुक से यहां पर बयान किया गया कि तेरी औलाद, तेरी खुदा परस्त औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत होंगी। जैसे तेरे डाइनिंग टेबल पे जैतून के पौधे लगा दिए गए हैं, ऐसे इसको सिंबलाइज किया गया है औलाद के साथ। सो पहले हम देखते हैं कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी। सो वाइन बीवी को जिससे यहां पे तशबीह दी गई, या अंगूर के साथ, या अंगूर के पौधे के साथ तशबीह दी गई, दिस मीन्स के इफ अगर किसी फैमिली में जो बीवी है वो खुदा परस्त है तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसे है जैसे एक अंगूर का पौधा है, अंगूर का दरख्त है। पैलेस्टाइन में जो अंगूर के पौधे हैं वो बेलों की तरह नहीं होते, वो दरख्तों की तरह होते हैं। और उनका ये कल्चर था कि वो अपने घर के सहन में दीवार के अंदर, बाउंड्री वॉल जो है, और दीवार के बाहर वो अंगूर को काश्त करते थे, अंगूर के पौधे लगाते थे। और उसका पर्पस ये था, नंबर वन, कि उनके घर के लिए शेड प्रोवाइड हो। जो अंगूर के पत्ते हैं वो जब समर्स आती हैं तो वो उसके लिए शेड हो। सो एक जो खुदा परस्त बीवी है या माँ है वो अपनी फैमिली के लिए शेड का रोल अदा करती है, साये का रोल अदा करती है, पत्तों का रोल अदा करती है। और जब फैमिली धूम में से गुजरती है, क्राइसिस में से गुजरती है, बच्चे हैं या शौहर हैं, जब वो प्रॉब्लम में से गुजरते हैं तो उनकी माँ और शौहर की जो गॉडली वाइफ है वो उसके लिए ऐसे है जैसे वो उसके लिए शेड प्रोवाइड कर रही है, कूल प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ जो जो अंगूर की बेलें हैं वो घर को खूबसूरती फराहम करती हैं, ग्रीनरी, पौधे, और खास तौर पर जिसको हम देख रहे हैं मेवादार ताक। सो किस चीज से रिलेट किया जा रहा है कि बीवी को, गॉडली वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए शेड है। शेर नहीं है, सबको काटती नहीं फिरती, बल्कि क्या है? शेड है, साया है, ताकि उसके नीचे उसके जो बच्चे हैं, उसका जो हस्बैंड है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो उस शेड के अंदर उस लाइफ को, फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकें। और सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि जो जो पौधे हैं या अंगूर की बेल है वो घर को खूबसूरत बनाती है. सो गॉडली वाइफ इज द ब्यूटी ऑफ द होम. एक मसीही खानदान की जो खूबसूरती है वो एक रूहानी माँ है, रूहानी बीवी है, खुदा परस्त बीवी है, जो उस तरह की गॉडलेस नहीं है जिसका जिक्र इमसाल 7 बाब उसकी 11 आयत में किया गया है. आप इसे घर में पढ़ सकते हैं व्हाट इज रिटन ओवर देयर. सो मसीही मैरिज को एक आइडियल मैरिज होना चाहिए. मसीही जो अज़दवाजी जिंदगी है, शादी का जो रिश्ता है, फैमिली लाइफ है, इसको आइडियल होना चाहिए. और मसीही शादी का पर्पस ये नहीं कि इसे जस्ट एंड्योर किया जाए, यानी सिर्फ बामुश्किल कायम रखा जा रहा है. कभी ये मसला हो गया, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, यार ये पैच अप किया जा रहा है, पास्टर्स को बुलाया जा रहा है, फलां चीज हो रही है, ये मसला है, वो मसला है. मैरिज जो क्रिश्चियन मैरिज है उसका ये पर्पस नहीं है, या वो इस तौर से उसको आइडियल नहीं होना चाहिए कि वो महज एंड्योर कर रहे हैं, आप बस गुजार रहे हैं, शादी हो गई है उन टाइम पे गुजारना ही गुजारना. ये क्रिश्चियन मैरिज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाइबल के मुताबिक इट मस्ट ग्रो. मैरिज मस्ट ग्रो. अ क्रिश्चियन मैरिज मस्ट ग्रो. इट मस्ट बिकम बेटर, इट मस्ट बिकम हैप्पियर, एंड इट मस्ट बिकम इंजॉयबल. क्रिश्चियन मैरिज को ग्रो करना चाहिए, क्रिश्चियन लाइफ को ग्रो करना चाहिए. मसीही जो इज़दवाजी जिंदगी है उसे हर साल बेहतर से बेहतर होते चले जाना चाहिए. इट शुड बी मोर अट्रैक्टिव, मोर इंजॉयबल ओवर द ईयर्स. सो इफ अ पर्सन इज हैप्पी एट होम, ही इज हैप्पी एवरीवेयर. अगर एक शौहर या बीवी या बच्चे अपने घर में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो हर जगह पे खुश होंगे. दूसरी एग्जाम्पल यहां पर दी गई है, तीसरी आयत में, वो बच्चों के ताल्लुक से है. और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत हो. जैसे जैतून के पौधे तेरे टेबल पे लगा दिए गए हैं, रख दिए गए हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, ऐसे तेरे बच्चे जो खुदा परस्त बच्चे हैं वो तेरे लिए होंगे. और जब हम जैतून का जिक्र करते हैं तो तीन बुनियादी बातें हमें उसमें नजर आती हैं. जैतून के दरख्त में नंबर वन, उसमें हमें फल नजर आता है, देयर इज फ्रूट ओवर देयर. तो जब हमारे बच्चे तीरों की मानद हैं, मसीही बच्चे हैं, खुदा परस्त बच्चे हैं, तो वो हमारी मसीही जिंदगी का फल हैं, वो हमारे दुआओं का फल हैं, वो हमारी जो क्रिश्चियन फैमिली है उसका फल है. नंबर दो, जो जैतून का दरख्त है वो लकड़ी प्रोवाइड करता है चीजें बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, अदर थिंग्स के लिए. नंबर थ्री, जो जैतून का पौधा है उसमें से जैतून का तेल जो है, नरिशमेंट, खुराक जो है वो निकलती है. सो ये फ्रूट और ये लकड़ी और ये तेल जो जैतून में से निकलता है, ये फैमिली की उम्मीद को, फैमिली के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. सो तीसरी आयत में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे फैमिली के लिए उनका फ्यूचर है, बच्चे अपनी फैमिली के लिए खुशी का सबब है और उनके फ्यूचर का सबब है. सो इन दोनों जबूरों में जो बातें हमने सीखी 127 में और 128 में, 6 कंक्लूडिंग बातें हम इसमें देखते हैं. नंबर वन, अगर आपने पहले मिस की है तो अब आप नोट कर सकते हैं. नंबर वन, बच्चे खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, बर्डन, मुसीबत या बोझ नहीं है. हैप्पी फैमिलीज आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. स्पिरिचुअल फैमिलीज आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. नंबर दो, फैमिली फेलोशिप एंड फैमिली जॉय. फैमिली फेलोशिप की वैल्यू जो है वो आपके पोजीशन की वैल्यू से, आपके कामयाबी की वैल्यू से, आपकी किसी और ट्रॉफी की वैल्यू से ज्यादा कीमती है, ज्यादा वैल्यू रखती है. आपकी जो असल क्रिश्चियन ट्रॉफी है मसीह जिंदगी में, आपको जो एजाद या ट्रॉफी मिली है या मिलती है वो ये है, फैमिली फेलोशिप, फैमिली जॉय. लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब फैमिली घर में होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब अपने अपने कमरों में हो. हाँ, देयर इज अ टाइम, कुछ स्टडी का टाइम है बच्चों के लिए, कुछ प्रेयर का टाइम है, दे शुड बी इन देयर रूम्स, लेकिन फैमिली का मतलब ये नहीं कि सारे अपने अपने कमरों में हैं, बीवी अपने कमरे में है, शौहर अपने कमरे में है, बच्चे अपने कमरों में हैं। तो जब किसी मेहमान ने आना है तो फिर सबने बाहर आना है। नो, इट शुड बी नॉट लाइक दैट। दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन फैमिली। फिर ये तो आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं किसी, फिर ये तो आप किसी एलडीए फ्लैट्स में रह रहे हैं कि हर बंदा अपने अपने। फैमिली मींस यू कम टुगेदर। एक आपकी कॉमन रूम हो, बैठने की जगह हो, बच्चे वहां पे गुआ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई बैठ रहे हैं, कोई बातचीत कर रहा है, दिस इज फैमिली। ये नहीं है बच्चे अपने अपने कमरे में, खाना भी वहीं खाया, स्टडी भी वहीं की, टीवी भी वहीं देखा, सब कुछ वहीं की और फिर वहीं सो गए। सुबह उठे पता चले बच्चे स्कूल भी चले गए ने, या बच्चे अपने कॉलेज भी चले गए। नो, दिस इज नॉट फैमिली। इस तरह से आप बिल्डअप नहीं होंगे। यू मस्ट सिट टूगेदर, यू मस्ट टॉक टूगेदर। अगर आपकी फैमिली लाइफ में टेलीविजन डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, कोई और, सिट टूगेदर, टॉक विद ईच अदर। और ये वो मोमेंट्स हैं जब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स जो हैं वो इनपुट होती हैं। नंबर थ्री, तीसरी बात जो हमने फैमिली और बच्चों के ताल्लुक से सीखी कि फैमिली की वैल्यूज मुकरर करें और फिर उनको फॉलो करें। बच्चों को बताएं ये हमारी फैमिली वैल्यू है, हम ऐसे नहीं करते हैं, हमारे बाप दादा ने कभी ऐसे नहीं किया, ये हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, ये हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, हमने इन बातों को फॉलो करना है, हमने दूसरों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना, ये क्रिश्चियन वैल्यू नहीं है। मे बी को रिश्तेदार हैं आपसे, वो हसद करते हैं, वो आपके मुखालिफ हैं, आपके दुश्मन हैं। आपने ये बच्चों को सिखाना है कि हमारी फैमिली वैल्यू, हमारी क्रिश्चियन वैल्यू नहीं है कि जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं हम उनके साथ करें। हमारी वैल्यू ये है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। सो लेट द चिल्ड्रन नो योर, बार बार अपने बच्चों को बताएं दिस इज नॉट आवर फैमिली वैल्यूज, ये हमारी फैमिली वैल्यू नहीं है, ये हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं है कि हमारे बच्चे गैर ईमानदारों में शादियां करें, हमारे जो मसीही बच्चे हैं वो नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज में शादी। ये हमारी वैल्यूज नहीं है, ये हमारी टीचिंग नहीं है, ये हमारा रिलीजन नहीं है। नंबर फोर, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू ऑनर योर फादर एंड योर मदर एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि वह अपने बड़ों को ऑनर करें। नंबर फाइव, अगर बच्चे और नौजवान जो हैं उनकी जिंदगियां, उनको शेप करना खुदावंद के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर चर्चेस में बच्चों के लिए और यूथ के लिए मुनासिब प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम उन्हें खुदावंद में प्रॉपरली बिल्डअप कर सकें। नंबर सिक्स, डोंट डाउन प्ले द वैल्यू ऑफ योर चाइल्ड। बच्चा जो कुछ कह रहा है उसे नजरअंदाज ना करें। ही मीन्स समथिंग, मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हाँ, जिद करना या जिद्दी होना बच्चे का एक और बात है, उसमें उसकी तरबियत करना दैट इज समथिंग एल्स। बट वॉट एवर अ चाइल्ड इज सेइंग एंड वॉट एवर ही इज आस्किंग, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक मकसद है। गौर करें कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, व्हाई ही इज आस्किंग दैट। कोई सवाल वो आपसे पूछ रहा है, कोई वो चीज आपसे मांग रहा है, तो आप उसके माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको बिल्कुल आप कंडेम ना करें, बिकॉज चाइल्ड आर, चिल्ड्रन आर प्रेशियस और उनकी एक वैल्यू है, उसको आप कंसिडर करें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों ये मांग रहा है, उसका पर्पस क्या है। और लास्टली, we must build our families, our Christian families around Jesus. यीशु मसीह के गिर्द हम अपनी families को, Christian families को build up करें। हम एक हवाला पढ़ेंगे मरकस की इंजील से,
मरकस 10 बाब उसकी 13वीं आयत से। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको छिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी।
दिस इज द लव एंड द केयर ऑफ क्राइस्ट फॉर द लिटिल चिल्ड्रन। बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ایسوں ہی کی ہے. لیکن سمپلی آج آخر میں جو ہم باتیں سٹڈی کریں گے چاند ایک فیملی لائف کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ فیملی ٹوگیدرنیس, خاندان مل کر سنڈے ورشپ کے لیے آئے. آپ کے چرچ کی جو بھی مین ورشپ ہے, سنڈے ورشپ, سنڈے مارننگ ورشپ, آلموسٹ پوری دنیا میں چرچ کی مین ورشپ ہوتی ہے. آلموسٹ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کچھ حالات کے سبب سے لوگ تھوڑا اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر سکتے ہیں, لیکن دنیا میں جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ سنڈے مارننگ چرچ کی مین سروس ہے. اس کے لیے خاص کچھ پوائنٹس ابھی ہم دیکھیں گے. فیملی ٹوگیدرنیس, ہماری ساری فیملی مل کر خدا کی حضوری میں ہے. لیکن جو ہمارا مین آج فوکس ہوگا اس میں وہ ہے چھوٹے بچے. اور جب ہم چھوٹے بچے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے 3+, 3 سال کے وہ بچے جو نرسری میں جانے کے قابل ہیں, پریپ میں جا سکتے ہیں, اور پری اسکول کے بچے ہیں اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں, پلے گروپ میں جا سکتے ہیں بچے, تو دے شوڈ بی ان دا چرچ. دس از دا پوائنٹ ٹوڈے. میں سنڈے اسکول کی بات نہیں کر رہے, وہ آپ کسی اور ٹائم پہ کریں. بہت سے ملکوں میں چرچ سے پہلے, چرچ کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ سنڈے اسکول کا پروگرام ہو جاتا ہے یا چرچ کے بعد ہوتا ہے. بہت سے چرچز میں سیٹرڈے کو سنڈے اسکول کر لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب چرچ کی مین عبادت ہے بچے وہاں پر موجود ہوں. وہ بچے جو پری اسکول بچے ہیں 3+ آنورڈز ہیں, دے شوڈ بی ان دا چرچ مین میٹنگ. اب اس تعلق سے آپ کے ذہن میں بہت سی بات, بچے تنگ کرتے ہیں, بچے شور کرتے ہیں, وہ آگے پیچھے جاتے ہیں, باہر جانا ہے, اندر جانا ہے. ہاں یہ سارے ملکوں کی یہی پرابلم ہے, اور یہی آج ہم نے سیکھنا ہے ہاؤ ٹو ٹیچ دیم. ہم کیسے سیکھیں اس تعلق سے, اور اپنے بچوں کو ہم اس تعلق سے کیا سکھائیں, چھوٹے بچوں کو جو 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, کہ وی شوڈ بی ٹوگیدر ان دا چرچ. پہلی بات, سنڈے سروس جو ہے, سنڈے مین سروس کسی بھی چرچ کے لیے وہ ایکسپیرینس ہے جیسے تبدیلی کے پہاڑ پر شاگردوں کو ایکسپیرینس ہوا. ٹرانسفیگریشن کے ماؤنٹ پر جب 3 شاگرد خداوند کے ساتھ تھے تو خداوند کی صورت تبدیل ہو گئی. اور وہاں پہ کون کھڑے تھے؟ موسیس اینڈ الائجہ اس پہاڑ پہ کھڑے تھے. اور خداوند کے ساتھ کیا ہوا؟ What happened with Christ? He turned into glory. خداوند پہ جلال آ کے ٹھہر گیا. This is what Sunday service is. ہم کیوں آتے ہیں سنڈے کو چرچ میں؟ صرف کلام سننے کے لیے نہیں, 1 گھنٹہ ورشپ کرنے کے لیے نہیں, اور اپنے ہدیے دینے کے لیے نہیں. یہ چیزیں بھی ہیں لیکن مین مقصد یہ نہیں ہے. مین مقصد یہ ہے ہم خدا کے جلال کو دیکھیں. سنڈے ورشپ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے ہر چرچ میں کہ ہم کیا دیکھ سکیں, دا گلوری آف گاڈ. چرچ میں آنے والا بزرگ, نوجوان اور بچہ جو ہے یہ محسوس کر سکے آج میں نے خدا کے جلال کو دیکھا. اور خاص طور پر جو ورشپ آور ہے, جب یہاں پہ 1 گھنٹہ ورشپ ہوتی ہے 10 سے 11 بجے جب ہم ورشپ کرتے ہیں, وہ ورشپ آور اس قدر پاورفل ہو, اس قدر انوائنٹڈ ہو, اس قدر پروفیٹک ہو, ہر شخص اپنی زندگی میں خدا کا جلال محسوس کر سکے. ہاللویہ. دس از دا پرپز آف دا چرچ. اس کے علاوہ جو چرچ کی میٹنگز ہیں, فرائیڈے میٹنگ ہو سکتی ہے, بدھ کی عبادت ہو سکتی ہے, بائبل سٹڈی میٹنگ ہو سکتی ہے, وہ ایسا تجربہ ہے جیسے زیتون کے پہاڑ پہ تھا. اولیویٹ ڈسکورس, جب وہ لکھا خداوند کے بارے میں زیتون کے پہاڑ پہ گئے, وہاں پہ بیٹھ گئے تو ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے, اور وہ خداوند سے پوچھنے لگے, خداوند یہ باتیں کب ہوں گی اور تیری آمد کے کیا نشان ہوں گے. جو سٹڈی کی باتیں ہیں, تعلیم کی باتیں ہیں, سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہیں, وہ بھی ضروری ہیں, لیکن وہ کسی اور دن ہونی چاہیے. اور وہ عبادت ایسی ہو جیسے زیتون کا پہاڑ ہے, جو جب شاگرد خداوند سے بات چیت کر رہے ہیں. لیکن سنڈے کی عبادت کیسی ہو؟ جیسے تبدیلی کا پہاڑ ہے اور خداوند یسوع مسیح پر جلال کو اور اس کے ساتھ ہم ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स को, मोसेस एंड एलाइजा, और न्यू टेस्टामेंट हीरोज को, पीटर जॉन को हम वहां पर, पीटर जॉन और जेम्स को गालबन हम वहां पे खड़ा हुआ देखते हैं. सो बिकॉज ऑफ इट संडे की जो हमारी खास तौर पर जो वर्शिप का टाइम है, बच्चों को वहां पे होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज पेरेंट्स याद रखें, जिनके बच्चे 3 साल के हैं, 3+ हैं, आगे जा रहे हैं, वर्शिप में, खास तौर पे वर्शिप के दौरान आपके बच्चों को मेन सेंचुरी में, चर्च में मौजूद होना चाहिए. और इस मुख्तसर टाइम में हम ये दो बातें सीखेंगे कि छोटे बच्चों को अगर हमने चर्च सर्विस में लाना है तो हाउ टू ट्रेन देम, हाउ टू टीच देम. नंबर दो, पेरेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हमने खुद अंडरस्टैंड करना है हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें कि वो मेन चर्च सर्विस में मौजूद हो. सो पहली बात हम ये देखेंगे, क्यों छोटे बच्चों को हमें चर्च में लाना है. छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो. लेट देम कम टू मी. क्राइस्ट इज द चर्च, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च. क्राइस्ट इज सेइंग छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, चर्च में आने दो, मेन सर्विस में आने दो, वर्शिप के लिए आने दो. खुदा रूह है और वो अपने लिए ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें. खुदावंद यीशु मसीह इस बात में इंटरेस्टेड है कि छोटे बच्चे चर्च की वर्शिप सर्विस में मौजूद हों. अगर वो सर्मन भी अटेंड कर सकें तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है सर्मन, तो मे बी दे कैन गो आउट फॉर अ वाइल. लेकिन जो वर्शिप का टाइम है, लेट द चिल्ड्रन बी देयर. व्हाई? सवाल ये पैदा होता है क्यों. नंबर वन, वर्शिप सर्विस में बच्चे क्या सीखते हैं. नंबर वन, दे लर्न टू एक्सपीरियंस गॉड. वो खुदा को एक्सपीरियंस करते हैं. अगर बड़े वर्शिप में खुदा का मसा फील कर सकते हैं, बच्चे आपसे ज्यादा करते हैं. अगर आप वर्शिप के दौरान खुदा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो छोटा बच्चा जो सैमुअल अभी 2 साल का था, वो खुदा की आवाज सुन रहा है. दे कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड, दे कैन लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड. संडे स्कूल में बच्चे सीखते हैं, ये नहीं कि वो वहां पे नहीं सीखते हैं, बट इट शुड बी एट सम अदर टाइम. वो भी करें, आप पहले करें, बाद में करें, किसी और दिन करें, जरूर करें, बार बार करें, बट द पॉइंट इज अगर बच्चे सिर्फ संडे स्कूल में जाएंगे, दे विल मिस दिस एक्सपीरियंस. संडे स्कूल में एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. चर्च में 5-fold मिनिस्ट्री मौजूद है, वर्शिप लीडर्स मौजूद हैं, कलीसिया मौजूद है गाने के लिए. चर्च का एटमॉस्फेयर और है, संडे स्कूल का एटमॉस्फेयर और है. तो बच्चे क्या सीखते हैं, हाउ टू एक्सपीरियंस गॉड. नंबर दो, दे लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. खुदा की हजूरी को, की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना वो सीखते हैं. नंबर थ्री, बच्चे खुदा की प्रेजेंस को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, दे एंजॉय इट, दे लर्न इट, एंड दे ट्राई टू कनेक्ट देमसेल्फ विद गॉड. अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर. सो व्हाट हैपेंस, जब बच्चा खुदा को एक्सपीरियंस करेगा, जब बच्चा खुदा को रिकॉग्नाइज करेगा, जब बच्चे की जिंदगी में खुदा की प्रेजेंस आएगी, तो व्हाट विल हैपन, ये एक्सपीरियंस, ये खुदा की हजूरी बच्चे के दिल में चली जाएगी, बच्चे के रूह में चली जाएगी, बच्चे के जहन में चली जाएगी. और जब बच्चा बड़ा होगा, ये एक्सपीरियंस हमेशा उसके साथ होगा. और एक्सपीरियंस क्या है, जब हम ये कहते हैं कि खुदा की हजूरी उसके दिल में चली जाएगी, तो इसका मतलब यह है खुदा उसके दिल में चला जाएगा. अगर आप एक छोटे बच्चे के दिल में खुदा अगर दाखिल हो जाता है, तो गॉड इज गोइंग टू स्टे देयर. वो बच्चा एथियस्ट नहीं बनेगा. ही वोंट बिकम अ क्रिश्चियन फूल, ही वोंट बिकम अ एथियस्ट. क्योंकि बचपन ही से उसके दिल में कौन दाखिल हो गया है, खुदा दाखिल. This is why David was so powerful. कि वो बचपन से वर्शिप करना जानता है। मैंने कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न कर। वाई पॉल इज सो पावरफुल, पॉल जैसा मिशनरी कभी दोबारा दुनिया की सतह पर पैदा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि उसने बचपन ही से गेमलीएल से तालीम पाई थी। हैकल में जाने वाला शख्स था, फरीसी था, और बचपन से तालीम पाता रहा एक जबरदस्त उस्ताद से, गेमलीएल जो चौथा रुबान था इसराइल के ऊपर, उसके कदमों में बैठकर उसने तालीम पाई। खुदा की प्रेजेंस उसकी जिंदगी में दाखिल है। कौन सी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? ये एक्सपीरियंस बूढ़े होकर उसकी जिंदगी में नहीं आया, बट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तिमोथियस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उसके पेरेंट्स, उसकी मां, उसकी नानी, खुदा और ईमान उसकी जिंदगी में इंपार्ट कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट ये है, लेट योर चिल्ड्रन लर्न टू वर्शिप। पहली रूहानी एक्सरसाइज, खूबी जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है, वो दुआ नहीं, वो बाइबल पढ़ना नहीं, ये चीजें बाद में सीखते रहेंगे, साथ साथ सीखते रहेंगे। व्हाट इज द नंबर वन थिंग ऑफ वैल्यू? वर्शिप। वर्शिप करना सिखाएं बच्चे, खुदा की वर्शिप। और वो बच्चा जब बड़ा होगा, ही विल बी अ ग्रेट एंड गॉडली चाइल्ड। गीत सिखाएं, जबूर सिखाएं। और आप ये एज अ पेरेंट्स जानते होंगे, बच्चे गीतों और जबूरों को बड़ी जल्दी पिक करते हैं, म्यूजिक को बड़ी जल्दी पिक करते हैं, बिकॉज स्पिरिट इज रिलेटेड विद म्यूजिक। स्पिरिट लव्स म्यूजिक, स्पिरिट रिसीव्स म्यूजिक, स्पिरिट एंजॉयज म्यूजिक। जैसे कहते हैं मौसीकी रूह की गुजा है, स्पिरिचुअली इट इज ऑल्सो ट्रू। और वर्शिप जो है आपकी स्पिरिट को एनर्जाइज करता है, इनकरेज करता है। सबसे पहले किस चीज पर मेहनत करें बच्चों पे? वर्शिप। कहानियां बाद में सिखाएं, डेविड की है, नूह की है, इट्स ऑल्सो गुड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न देम, लेकिन सिस्टमेटिकली। मे बी हर महीने तू एक नया गीत, छोटे गीत, बड़े गीत, जबूर आप देखें, मुश्किल मुश्किल जबूर और उसकी रागें बच्चे फॉलो कर लेते हैं। कहां से सीखते हैं वो? जब वो चर्च में बैठे हैं और वो अटेंटिव है और वर्शिप हो रही है, बच्चे की स्पिरिट में डिपॉजिट हो रहा है। उसको कोई नहीं सिखा रहा, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा है। जैसे बच्चे टीवी से, कार्टूनों से उल्टी सीधी सीधे सीखते हैं, क्योंकि उनकी माइंड प्रोसेसिंग फास्ट है, ऐसे जब वो चर्च में होंगे तो वो जबूर और गीत और वर्शिप वो बड़ी तेजी से फॉलो करेंगे। मुश्किल मुश्किल ट्यून्स और जबूर वो लर्न कर लेते हैं, इसलिए कि बच्चे में इतनी कैपेसिटी है। और नंबर दो, ये यीशु मसीह की ख्वाहिश है, बच्चों को मेरे पास आने न। लेट चिल्ड्रन वर्शिप मी। क्या लिखा है? कि वो शीरखार के होंठों से अपनी हमद को वर्शिप। शीरखार बच्चा है तो क्या कर सकता है? हमद। 3 साल का बच्चा तो शीरखार से काफी बड़ा है, वो शीरखार के होंठों से अपनी हमद को कामिल करवा लेता है। So, पहली चीज जो खुदा चाहते हैं आपका बच्चा सीखे स्पिरिचुअल स्कूल में, फैमिली में, चर्च में, दैट इज हाउ टू वर्शिप गॉड, वर्शिप करना। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है पेरेंट्स के तौर पे? नंबर वन, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वर्शिप आवर में चर्च में मौजूद हो, ताकि बच्चे को पता हो कि चर्च का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सरमन के टाइम जाना है, चर्च का ये मतलब है कि वर्शिप टाइम पे भी मैंने वहां पे होना है, कलाम के टाइम पे भी मैंने वहां पे होना है, और वर्शिप के टाइम पे भी मैंने वहां पर होना है। नंबर दो, घर में भी आप गीत गाएं, जबूर गाएं, बच्चों को आप लेके बैठें, और इवन बच्चे अगर अपना खेल कूद भी कर रहे हैं, व्हेन यू वर्शिप, बच्चे की जो स्पिरिट है, माइंड है, वो उसको रजिस्टर करता है। नंबर थ्री, जब आप वर्शिप टाइम में चर्च में बैठे हैं तो आप भी वर्शिप करें। बच्चा आपकी तरफ देख रहा, मेरे माँ प्यो तो गांधे कुछ नहीं पे, चुप करके बैठे हैं। यू ऑल्सो वर्शिप, तो बच्चा भी क्या करेगा? वर्शिप करेगा। जब आप गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, एंजॉय करेंगे, तो बच्चा देखेगा यार मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, मुझे भी करनी चाहिए। नंबर फोर, इफ पेरेंट्स फॉल इन लव विद वर्शिप, देयर चिल्ड्रन विल ऑल्सो फॉल इन लव विद वर्शिप। और अगर हमने ये पहली खूबी, पहली सीढ़ी, पहली ईंट रद्दा अपने बच्चे की जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में रख दिया है कि हमने उसके अंदर वर्शिप की एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, एबिलिटी पैदा कर दी है, टेस्ट पैदा कर दी है, लिंक पैदा कर दिया है, वो बच्चा यकीन जाने जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वो वर्शिप में भी ग्रो करता चला जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग में भी ग्रो करता चला जाएगा। ही विल बिकम अ ग्रेट वर्शिपर, अ गॉडली चाइल्ड, क्योंकि हमने उसकी लाइफ में एक वैल्यू, एक बीज जो है प्रस्तिश का, खुदा की प्रस्तिश का वो बो दिया है। सो फैमिलीज कम टुगेदर फॉर वर्शिप, ताकि हमारे बच्चे जो मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट है हमारी क्रिश्चियन लाइफ का, वर्शिप करना सीखें। सो कंक्लूजन क्या है, पहली चीज हम बच्चे को क्या सिखाएं, सो टीच आवर चिल्ड्रन टू कैच द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, कैच द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, सिंगिंग वर्शिप, बच्चे ट्यून्स याद कर लेते हैं, लफ्ज याद कर लेते हैं। और मे भी घर में जाके वो आपसे पूछ सकते हैं, थोड़े बच्चे बड़े हैं, 5 साल का, 6 साल का, इसका मीनिंग क्या है, इस गीत का मीनिंग क्या है, फलां वर्ड लाइन का मीनिंग क्या है। फिर आपको मजीद मौका मिलता है कि आप उसके साथ कलाम की बातें शेयर कर सकें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वर्शिप की स्पिरिट को कैच करें। सो इफ यू आर देयर इन द वर्शिप आवर, और अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें कि वो भी वहां पर मौजूद हों, दे विल लर्न टू वर्शिप। और एक चीज जो हमने बार बार चर्च के लिए अपने बच्चों को सिखानी है वो ये है कि सिट स्टिल एंड बी क्वाइट, सिट स्टिल एंड बी क्वाइट। क्या सिखाएं बच्चों को, बेटा आराम से बैठना है, खामोश रहना। पूरा हफ्ता आपने अपने बच्चे को ये बताते रहना, बेटा संडे को चर्च में जाना है, आराम से बैठना है, खामोश रहना। मंडे को बताएं बच्चे को जब भी मौका मिलता है, बेटा संडे को हमने चर्च में जाना है, आराम से बैठना है, खामोश रहना है। इवन संडे को जब आप चर्च में आ रहे हो उस वक्त ही बच्चे को बताएं, बेटा हम चर्च में जा रहे हैं, आराम से बैठना है, खामोश रहना है। जब आप मीटिंग से वापस घर जाते हैं उस वक्त भी बच्चे को बताएं, बेटा अगले संडे हमने फिर चर्च में आना है, आराम से बैठना है, खामोश रहना है। ट्यूजडे को, वेनसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, बार बार आपने जब भी टाइम मिले साथ साथ ये सिखाते रहना है, बेटा संडे को चर्च जाना है, आराम से बैठना है, खामोश रहना है। क्या हमने उनको बताना है, आराम से बैठना है और खामोश रहना। वो बच्चे के जहन में ये बात जो है आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी। सो वॉट हैपन्स, आखिरी बात जो हम देखेंगे, जब बच्चा एक चर्च सर्विस में है, वर्शिप सर्विस में है, तो वॉट हैपन्स। नंबर वन, अब छोटे बच्चे हैं 3 साल का, 4 साल, कुछ ना कुछ तो उसने करना ही करना है, कभी इधर को स्लिप होगा, कभी उधर को जाएगा, कभी ये चीज, बट रिमेंबर योर चाइल्ड इज लिसनिंग। अगर वो खेल भी रहा है, कभी वो माँ का बैग खींच रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी मोबाइल फोन पकड़ रहा है, बच्चे का माइंड बहुत तेज है, वो चारों तरफ चलता है, बहुत सी वैल्यूएबल रूहानी चीजें उसकी जिंदगी में इंपार्ट हो रही है, ही इज गेटिंग समथिंग। वर्शिप से वो खुदा का एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है, शर्मन से वो खुदा का नॉलेज हासिल कर रहा है, ही इज गेटिंग समथिंग। नंबर दो, जब वो वर्शिप के दौरान चर्च में है तो वो म्यूजिक और वर्ड्स को अपने अंदर रजिस्टर कर रहा है और वो उसके लिए फमिलियर होते चले जा रहे हैं, फमिलियर हो रहे हैं, बच्चा फमिलियराइज हो रहा है। जब भी किसी ऐसी जगह पे होगा, मीटिंग में होगा कि वो गीत शुरू होगा, फौरन बच्चे के अंदर वो बैक फ्लैश आ जाएगा कि हम अपने चर्च में हम ये गीत गाते हैं, हम अपने चर्च में ये ज़बूर गाते हैं। तो म्यूजिक और वर्ड्स दे बिकम फैमिलियर विद द चाइल्ड। नंबर 3, लेटर ऑन अगली स्टेज पे बच्चा जो है गीत के जो वर्ड्स हैं, लव्स हैं, उसका मैसेज भी रिसीव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है, इस आयत का मतलब क्या है, इस गीत का मतलब क्या है, बच्चा उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। नंबर फोर, जब बच्चा घर में भी वर्शिप करता है, जब बच्चा चर्च में भी वर्शिप करता है और आप बार बार उसको ये सिखाते हैं बेटा सिट स्टिल, बी स्टिल एंड बी क्वाइट, तो वर्शिप जो है बच्चे का लाइफस्टाइल बन जाता है, वो परस्तार बन जाता है। खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। ना सिर्फ वो परस्तार बन जाता है बल्कि बच्चा वर्शिप को नेचुरल फील करना शुरू कर देता है। क्यों बहुत से लोग चर्च में गीत नहीं गाते हैं? गा सकते हैं, जबूर आते हैं, गीत आते हैं, किताबें हमारे पास हैं, खोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में देखा जाता है कि बहुत कम लोग गाते हैं और हमारी कम्युनिटीज में या कल्चर में तो बहुत कम गाते हैं, इसलिए कि हम क्या महसूस करते हैं, हम शर्म महसूस करते हैं। हाँ वो बात ठीक है कि हमें राग नहीं आती है, लेकिन मैं आपकी आवाज मुझसे बहुत बेहतर है, आप में से बहुत से लोग बड़ा अच्छा गा सकते हैं, मैं तो यहां गाना शुरू करूं तो आप जाइए घर ही चलिए। द पॉइंट इज कि आपको बचपन में वर्शिप का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, सिखाया नहीं गया, वर्शिप आपके लिए नेचुरल नहीं हुई है। आप उसको अपने लिए अननेचुरल समझते हैं, यार मैं गाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे, मेरी आवाज किधर जा रही है, सुर किधर जा रहे हैं, नोट्स किधर जा रहे हैं। बट व्हेन इट इज नेचुरल फॉर यू, एक चीज जो आप बार बार करते रहेंगे घर में भी चर्च में भी, वर्शिप वर्शिप वर्शिप, तो वर्शिप हमारे लिए क्या हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। जब हम घर में भी चर्च में भी दुआ करेंगे, दुआ हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी, हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगी। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा हम और गीत गाएंगे, हम जोर से गीत गाएंगे, हम तालियां बजाकर गीत गाएंगे। बहुत से अमेरिकन चर्चेस में और अफ्रीकन चर्चेस में जब गीत शुरू होते हैं वो काले खुद ही खड़े हो जाते हैं, उन्होंने बिठाना पैंते, यार बैजो जरा सबर भी करो, कोई अनाउंसमेंट भी कर लें दो, दे जंप एंड दे वर्शिप। कालों में तो वैसे ही कोई उनकी बॉडी भी म्यूजिक का करंट लगा हुआ है, बट स्टिल जो 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 लोग चर्च में आते हैं दे एंजॉय वर्शिप। और ऐसे ऐसे अफ्रीकन चर्चेज हैं जब वहां ये अनाउंसमेंट की जाती है कि अब हदीये के वक्त आ गया है, तो वो तालियां बजाना शुरू करते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं, अब हमारा बरकत लेने का वक्त आ गया। अपनी जिंदगी में वर्शिप का कल्चर बनाए, वर्शिप का लाइफ स्टाइल बनाए, वर्शिपर बने, और आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे और आप में आपको फिर उनकी जिंदगियों में एक सॉफ्टनेस, एक सेंसिटिविटी, एक कंपैशन, खुदा तरसी, खुदा परस्ती आपको उनकी जिंदगियों में नजर आएगी, क्योंकि वर्शिप के थ्रू वो बहुत सा खुदा का एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। सो पहली बात ये थी कि लेट योर चाइल्ड कैच द स्पिरिट ऑफ वर्शिप। नंबर दो, लेट योर चाइल्ड ग्रो इन द एनवायरमेंट ऑफ वर्शिप। अपने बच्चे को वर्शिप की एनवायरमेंट में बढ़ने का मौका दें, ग्रो करने का मौका दें, देन योर चाइल्ड विल बी अ डिफरेंट चाइल्ड। चर्च वर्शिप में अपने बच्चे को मौका दें कि वो ग्रो करें, और इवन चर्च की इबादत खत्म भी हो जाती है, कुछ देर के लिए अपने बच्चों को रहने दें वहां पर, 5-10-20 मिनट आधा घंटा लिंगर ऑन करें ताकि आपका बच्चा चर्च की एनवायरमेंट में रहे, वर्शिप की एनवायरमेंट में रहे, कलाम की एनवायरमेंट में रहे। जब इबादत खत्म हो जाती है फिर भी एनवायरमेंट मौजूद रहती है और बच्चे उसको रिसीव करते रहते हैं। लेट योर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर अ व्हाइल स्टे इन द चर्च आफ्टर द सर्विस। लेट योर चिल्ड्रन ग्रो अप इन चर्च। चर्च में अपने बच्चों को ग्रो करने का मौका दें, चर्च वर्शिप में अपने बच्चों को ग्रो करने का मौका दें और वो वर्शिप को एंजॉय करना सीखेंगे। वो आपसे पहले फिर चर्च में होंगे, जब ये कनेक्शन उनका हो जाएगा खुदा के साथ, आप सुस्त पड़ जाए, आप कहेंगे यार आज मैं बड़ा थक गया चर्च नहीं जा, बच्चे कहेंगे नहीं हमने चर्च जाना है, वो आपको चर्च में लेकर आएंगे। वर्शिपिंग चाइल्ड इज अ गॉडली चाइल्ड। वो खुदा से डरने वाला होगा, खुदा से प्यार करने वाला होगा, और स्पेशल वे में वो खुदा की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में कैरी करेगा। चंद एक आखिरी थॉट्स, प्रैक्टिकल चीजें कि हम अपने बच्चे को कैसे वर्शिप के लिए, खुदा के कलाम के लिए चर्च में आने के लिए तैयार करें कि वो मंडे मॉर्निंग हमारे साथ चर्च में जाए। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। द फर्स्ट ट्रेनिंग, बच्चे की जो पहली ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बिगिंस एट होम। घर में आपने सिखाना शुरू करना है। बेटा आराम से बैठ जाओ, अब दुआ का वक्त है। आंखें बंद करो, हम दुआ करने लगे हैं। हाथ जोड़ो, हम दुआ करने लगे हैं। सर नहीं, बच्चा क्या सीख रहा है? जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सीख रहे हैं, चर्च में कैसे जाना है, चर्च मैनरिज्म सीख रहे हैं। नंबर 2, हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न कि उसने मेन वर्शिप मीटिंग में जाना है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है। ट्रेनिंग की जरूरत, दे नीड ट्रेनिंग। छोटे बच्चे हैं, दे नीड ट्रेनिंग। कैसे हम उनको ट्रेनिंग दें? पहली बात क्या थी? घर में बी क्वाइट एंड बी स्टिल बेटा, जब आपने चर्च में जाना है। दूसरी ट्रेनिंग क्या है? बच्चों को कलीसिया की जो दूसरी इबादत है, छोटी इबादत है, उनमें कंटिन्यूसली लेकर जाएं, ताकि बच्चे उस माहौल से आशना हो। फॉर एग्जाम्पल, पानी के बपतिस्मे, वाटर बैप्टिज्म हो रहे हैं आपके चर्च में, छोटे बच्चों को आप लेके जाए वहां पे देखने के लिए। हम क्या कहते हैं? और चलो यार बच्चियां घर लाइ, उन्होंने उत्तर की करना है, बपतिस्मे होने ने पानी दे। नो, योर चिल्ड्रन विल लर्न ओवर देयर। वो देखेगा कि ये कोई मेरा भाई है या कोई और चर्च का बंदा है, ये बैप्टिज्म ले रहा है। उसका माइंड सोचना शुरू करेगा, व्हाट इज बैप्टिज्म, मकसद क्या है बपतिस्मे का। और बाय द टाइम ही विल ग्रो अप, आपको कहना नहीं पड़ेगा बेटा पानी का बैप्टिज्म ले। बच्चा खुद कहेगा मुझे, अपने पेरेंट्स को, मुझे बपतिस्मा दे। इस मीटिंग सर्विस में आप उनको लेके जाए साथ, जिनके छोटे बच्चे हैं। अगर आपका किसी का भी बैप्टिज्म नहीं है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, फॉर ट्रेनिंग। चर्च में सिर्फ लर्निंग नहीं, ट्रेनिंग भी होती है। अपने बच्चे को आप लेकर जाएं ताकि वो सीखे व्हाट इज वाटर बैप्टिज्म। होली कम्युनियम जब लिया जा रहा है, बच्चों को देखने दें ताकि वो अंडरस्टैंड करें, सीखे ये क्या हो रहा है। सेमिनार्स में बच्चों को लेके आए ताकि वो ये अंडरस्टैंड करें व्हाट इज सेमिनार। और एक सर्वे जो किया गया, उसमें बच्चों के ताल्लुक से जो रिसर्च सामने आई, बच्चे सबसे ज्यादा वर्शिप में क्वायर को एंजॉय करते हैं। क्वायर, चर्च क्वायर हमेशा बच्चों को अट्रैक्ट करती है। सोलो सिंगर जो हैं वो एडल्ट्स के लिए अच्छे हैं, वो उस वर्शिप को एंजॉय करते हैं और वो उसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो क्या पसंद करते हैं? क्वायर हो, वो बड़े अट्रैक्ट होते हैं उसे जब वो मिलकर गाती है क्वायर। और मेन वर्शिपर नहीं गा रहा और क्वायर जब गाती है तो बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एक कलेक्टिविटी का मैसेज, एक वर्शिप का, और एक नया एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है। सो दिस इज हाउ दे लर्न। चर्च की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कोई बाइबल कॉलेज का फंक्शन है, सेरेमनी है, लेट द चिल्ड्रन बी देयर बिकॉज दे विल लर्न। दिस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड्स। नंबर 3, हमने बच्चों को यह सिखाना है कि खामोशी से बैठना है। कई दफा चर्चेज में फैमिली एरिया बने होते हैं जिसमें बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन अगर चर्चेज में फैमिली एरियाज नहीं है और आप छोटे बच्चों के साथ हैं, ट्राई टू बी इन द बैक एज मच पॉसिबल। जितना आप पीछे बैठ सकते हैं आप बैठें। क्यों? ताकि दूसरों को डिस्ट्रैक्शन ना हो। बच्चे के आने जाने से किसी और का जो फोकस है वो डिस्टर्ब ना हो। नंबर 4, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर पास्टर्स। छोटे बच्चों को ये सिखाएं आप, 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, ही मस्ट नो द नेम ऑफ हिज पास्टर। बेटा आपके जो सीनियर पास्टर उसका ये नाम है, आपके जो पास्टर इंचार्ज है उनका ये नाम है, जो असिस्टेंट पास्टर उनका ये नाम है, जो आपके जो वर्शिप करने वाले लीडर हैं चर्च के उनका ये नाम है, जो तबला बजाने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं उनका ये नाम है, ताकि बच्चे का एक लिंक पैदा हो उनके साथ। टीच योर लिटिल चिल्ड्रन द नेम ऑफ योर पास्टर्स एंड चर्च लीडर्स। और फिर कोशिश करें एवरी संडे इबादत के बाद आपके बच्चे पास्टर के साथ मिलें, वर्शिप लीडर के साथ मिलें, लेट देम शेक हैंड विद देम, ताकि वो लीडरशिप के नजदीक आना सीखें, उनको एंजॉय करना सीखें, रेकग्नाइज करना सीखें, फमिलियर होना सीखें। और जब वो उनकी इबादत में बैठें, कलाम सुन रहे हैं या वर्शिप कर रहे हैं, बच्चे उसको एंजॉय कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। फिर हम बच्चे को ये सिखाएं कि जो कुछ बेटा चर्च में होना है वो ही आपने करना है, जो कुछ सर्विस में हो रहा है अगर सब खड़े हो रहे हैं तो आप भी, आपने भी खड़े होना है, अगर सब बैठ रहे हैं तो आपने भी बैठना है, अगर सब ने आंखें बंद की हैं तो आपने भी आंखें बंद करनी है। फिर हमने बच्चों को सिखाना है कि इबादत के दौरान आपने आगे सीधा देखना है, आपने पास्टर की तरफ देखना है या वर्शिप लीडर की तरफ देखना है, आपने इधर उधर नहीं देखते रहना या आपने घड़ी को नहीं देखते रहना और आपने अंदर बाहर नहीं देखते रहना, आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ, बी स्टिल एंड बी क्वाइट। और आप कहां पे देखते रहे बच्चे, सामने की तरफ देखें कि जो कुछ सामने हो रहा है वो उसको नोट कर सकें, पार्टिसिपेट करें वर्शिप मीटिंग में। आखिरी बात, अपने बच्चे को हमने बार बार ये सिखाना है, बेटा चर्च में कोई चीज नहीं खानी है, नथिंग टू ईट इन द चर्च। अच्छा ये हम आपको ले देते हैं, आप उसकी जेब में डाल दें, ये च्युइंगम्स हैं, सलांटीज हैं, फलान चीज हैं, आप ये जेब में डाल लें, चर्च में नहीं खाना है, ये इबादत की जगह है, ये सीरियसनेस की जगह है, ये खामोशी की जगह है, ये रेवरेंस की जगह है, ये पाकीजगी की जगह है, बातें नहीं करनी है, हिलना जुलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, जेब में डाल लें, बाद में आप खा लें, इबादत के बाद आप च्युइंगम खाएं, जो मर्जी खाएं, आफ्टर द सर्विस, एंड द चिल्ड्रन विल लर्न। बच्चे सीखते हैं इन बातों को। और पानी की बोतल अगर आप अपने साथ ले आए, अगर हर फैमिली और हर शख्स एक जिनको जरूरत पड़ती है बार बार पानी पीने की, ताकि आपको अंदर बाहर ना जाना पड़े, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जब पानी की जरूरत पड़े, छोटे बच्चे को जरूरत पड़े या आपको जरूरत पड़े, तो आप आराम से अपनी बोतल निकाल लें और पानी पी लें। आमीन। आखिरी बात, तीन चीजें जब आप चर्च में आए तो आपके साथ हो, और तीन चीजें आपके बच्चे के साथ हो, नंबर वन बाइबल, नंबर दो नोटबुक, नंबर तीन पेन, इसके बगैर ना आप चर्च में आए। क्या तीन चीजें हमारे पास हो, बाइबल, नोटबुक, पेन। बाइबल पढ़ने के लिए नोटबुक हर बंदे के पास होनी चाहिए, पेन आप सबके पास होने चाहिए, नोटबुक होने चाहिए, हवाला नोट करना है, कोई पॉइंट नोट करना है, कोई बात नोट करनी है, कोई रेफरेंस नोट करना है, स्पेक्टेटर बन के हम चर्च में ना जाएं, पार्टिसिपेटर बनकर हम चर्च में जाएं। अगर आप नहीं ला सकते नोटबुक तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए नेक्स्ट संडे ले आऊंगा, पेन का भी हम इंतजाम कर देंगे आपके लिए, बट मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट पर्सनली अपनी लाइफ में, मेक अ हैबिट ऑफ अ डायरी एंड अ नोटबुक एंड अ पेन और एक बाइबल आपके पास, और यही तीन चीजें आपके बच्चे के पास। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसके नोट्स भी ग्रो करेंगे, उसकी हैबिट भी ग्रो करेगी, कई पॉइंट्स को वो नोट कर सकता है, क्योंकि हम सबकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम सबको याद रख सकें। मुझे तो कई दफा लोग कहते हैं आपने फलां मैसेज में ये कहा था, मैं कह मुझे याद नहीं है, मैं तो जैसे एटीएम मशीन होती है, मैं सरमन देने वाली मशीन हूं, हमें बाद में याद नहीं रहता हमने डिटेल में क्या मैसेज दिया, नोट्स खोलेंगे तो हमारे सामने बात आ जाएगी, बहुत सी बातें याद भी रहती हैं, सारी बातें नहीं याद रहती। सो टू बिकम अ गुड क्रिश्चियन, टू बिकम अ गुड डिसाइपल, टू बी ए गुड लर्नर, नेक्स्ट टाइम जब हम चर्च में आए तो एक छोटा बैग हमारे पास हो, एक बाइबल, नोटबुक और एक पेन हमारे पास हो, ताकि हम कुछ चीजों को नोट कर सकें। सेम ये तीन चीजें आपके उन बच्चों के पास हो जो लिखना जानते हैं। मे बी वो कोई तस्वीर बना देगा, ये आपका बच्चा पहली में जाता है, दूसरी में जाता है, मे बी वो उसे इतना फायदा नहीं उठा सकता है, बट जस्ट लेट हिम राइट समथिंग। मे बी वो जीसस लिख देगा, मे बी वो कुछ और लिख देगा नोटबुक, जो कुछ उसने अंडरस्टैंड किया। उसे कहते रहे बेटा आप जो कुछ सीख रहे हैं समझ रहे हैं वो आप इस नोटबुक पे लिख दें। डेट डाल दें उस दिन की और उस बच्चे को कुछ लिखने दें, एक्सप्रेस करने दें, कुछ जो कुछ उसने एब्जॉर्ब किया है आप उसको उसको रिलीज करने का मौका दें। सो ट्रेन करें बच्चों को, खाना पीना नहीं चर्च में, पानी की बोतल पास। आखिरी बात जो हमने बच्चे को भी सिखानी है चर्च में आने के लिए और अपने आप को सिखानी है चर्च में आने के लिए, वो आखिरी बात क्या है, बेटा सोना नहीं है चर्च। और आपकी जिम्मेदारी आप चेक कर दे रहे हैं अपने साथ वाली अगर सोते नहीं गया, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग की इतनी प्रॉब्लम है कि सारा सारी रात लोग जागते हैं। 5 दिनों से हमारे घर की बिजली नहीं आ रही, पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, फॉल्ट पकड़ा नहीं जा रहा किसी भी इलेक्ट्रिशियन से अभी तक। मे भी एक दो दिन आप दुआ करें कि 1-2 दिनों में कोई मसला हल हो जाए, हम भी जिंदगी में वापस आ जाएं। बट द पॉइंट इज चर्च में नहीं सोना है, अपने बेटे को अपनी बेटी को आपने सिखाना है, बी स्टिल बी क्वाइट एंड डोंट स्लीप। हालेलुया, खुदावंद खुदा आपको बरकत। आई एम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरमां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। Grace Assemblies of Pakistan रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूएकार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और खतो खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।